ہیلو السلام علیکم, آئی ایم نجمہ, ایف ایم 96 ساہیوال سے لائیو. اس وقت آپ کی سماعتوں تک میری آواز جاری ہے, اور اس وقت تمام لوگ جو ہیں پاکستان میں اور پاکستان کے علاوہ اس وقت ہمیں سن رہے ہیں ان امریکہ, اور امریکہ اور پاکستان میں یہ لائیو شو فرسٹ شو ہمارا جو ہے وہ آن ایئر جا رہا ہے. اور آج کے اس شو میں میں آپ کا ساتھ دوں گی اب سے لے کر ٹھیک 10 بجے تک, اور ہمارے ساتھ امریکہ میں موجود ہوں گے عاطف صاحب. عاطف میرا ساتھ دیں گے, اور آج کے اس شو میں بہت مزہ آنے والا ہے جی, بہت انفارمیٹیو شو ہوگا اور بہت سی باتیں آپ سے کرنے والے ہیں. تو انشاءاللہ آئی ہوپ کہ یہ پروگرام جو ہے آپ انجوائے کریں گے, اور انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام تک یو ول ویٹ فار اس.
جی ہاں بالکل ایسا ہی ہوگا نجمہ, تھینک یو ویری مچ. آپ نے بہت اچھا انٹروڈکشن دیا ہے سبھی سننے والوں کو ساہیوال میں, میری طرف سے بہت بہت سلام, اور آئی ہوپ آپ کا آج کا دن بہت اچھا گزرا ہوگا. جیسے نجمہ نے کہا کہ یہ ایک مشترکہ پروڈکشن ہے وائس آف امریکہ کی اردو سروس کی اور ایف ایم سن رائز پاکستان کی وائس آف امریکہ کی اردو سروس کے واشنگٹن اسٹوڈیوز سے. میں ہوں محمد عاطف, آپ سب کو میرا بہت بہت سلام پہنچے, اور ساہیوال کے لوگوں کے لیے پہلی مرتبہ میں یہ پروگرام لے کر آ رہا ہوں. اس سے پہلے شاید ساہیوال نے مجھے سنا ہوگا, لیکن ساہیوال کے اسٹیشن پر پہلی مرتبہ ہم یہ پروگرام کرنے جا رہے ہیں. سو آئی ہوپ ہمارا یہ ساتھ بہت ہی اچھا ہوگا, اور ہمارا یہ پروگرام بھی بہت اچھا ہوگا. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس پروگرام میں آپ کے لیے بہت کچھ لے کر آئیں. میوزک تو آپ سنتے ہی ہیں, باتیں بھی بہت سی سنتے ہیں, لیکن میری کوشش یہ ہوگی کہ اس پروگرام کے ذریعے آپ کو کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں بتایا جائے جو کہ شاید ہمارے جو لوکل اخبارات ہیں یا ٹیلی ویژن چینلز ہیں ان پر آپ کو سننے یا دیکھنے کو نہ ملتی ہوں. کچھ معلوماتی پروگرامز بھی آپ کے لیے کریں گے, اور کچھ یہ بھی آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے, ریسرچ کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے, میڈیسن کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے, اور بہت ساری چیزیں ہیں جن پر آگے چل کر بات چیت ہوتی رہے گی. لیکن آج چونکہ پہلا پروگرام ہے تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم آپ کو لوڈ کر دیں بہت ساری انفارمیشن کے ساتھ, اور آتے ہی ایک بڑے سنجیدہ سے ٹاپک پر گفتگو شروع کر دیں. تو میں نے سوچا کہ آج میں کچھ ساہیوال کے بارے میں جاننے کی کوشش کروں گا, اور ساہیوال کے جو ہمارے سننے والے ہیں ان کو وائس آف امریکہ کے بارے میں بتانے کی کوشش کروں گا. وائس آف امریکہ کی اردو سروس کی ریڈیو ٹیلی ویژن نشریات, ہمارے انٹرنیٹ کے اوپر جو کچھ مٹیریل ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کے لیے پڑا ہوا ہے اس کو شیئر کروں گا, اور باقی اوور آل کچھ گپ شپ کریں گے.
جی عاطف تھینک یو ویری مچ, آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں ساہیوال کے اسٹوڈیو میں, ان ساہیوال ان آل پاکستان, اور ویری ہیپی ٹو ٹاک ٹو یو. اور انشاءاللہ آج کے پروگرام میں جیسے آپ نے کہا کہ انٹروڈکشن پروڈکٹ پروگرام ہے ہمارا, اور اس پروگرام کو ہم کوشش کریں گے کہ آج تھوڑا سا لائٹ رکھیں تاکہ ہمارے لسنرز جو ہیں وہ ہمیں اس پروگرام میں ان پہ زیادہ برڈن نہ پڑے اور وہ اگلے پروگرام تک توبہ توبہ نہ کریں. انشاءاللہ اگلا پروگرام ہمارا جو ہوگا وہ کافی انفارمیٹیو ہوگا. تو ساہیوال کے ریگارڈنگ انشاءاللہ میں آپ کو جو ہے جو میرے علم میں ہے میکسیمم وہ بتانے کی کوشش کروں گی, اور آپ کے امریکہ کے لسنرز کو, پاکستان کے لسنرز کو, باقی امریکہ کے حوالے سے وائس آف امریکہ کے اسٹوڈیو سے آپ ہمیں انفارمیٹیو پروگرام دیں گے.
جی بالکل دیں گے, اور جیسے میں نے کہا تھا کہ وائس آف امریکہ کے بارے میں بتانے کی کوشش کریں گے آپ کو کہ وائس آف امریکہ ہے کیا, تو بہت سارے ہمارے جو سننے والے ہیں ان کو یہ بتا دیں کہ جناب وائس آف امریکہ امریکہ کا بین الاقوامی نشریاتی ادارہ ہے, ٹیلی ویژن ریڈیو اور انٹرنیٹ پر پوری دنیا میں سننے دیکھنے اور پڑھنے والوں کے لیے ہم خبریں, تجزیے, فیچرز, انٹرٹینمنٹ پر مبنی رپورٹس, ہر کچھ جتنے بھی شعبے ہو سکتے ہیں براڈ کاسٹ اور کمیونیکیشن کی انڈسٹری میں, ان سبھی پر بات کرتے ہیں. وائس آف امریکہ کی اردو سروس کے ٹیلی ویژن پروڈکٹس ہیں, اردو ریڈیو کی نشریات ہیں, ہماری ویب سائٹ ہے www.urduvoa.com. ویسے آپ اس ویب سائٹ پر جا کر ہمارے اس پروگرام کو لائیو بھی سن سکتے ہیں. اگر آپ ریڈیو پر نہ سننا چاہ رہے ہوں, فرض کریں آپ کہیں باہر ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ اس پروگرام کو سنا جائے, تو آپ ہماری ویب سائٹ پر لاگ ان کر سکتے ہیں, اور ہماری ویب سائٹ پر جا کر آپ یہ پروگرام سن سکتے ہیں لائیو ہر منگل اور بدھ کی رات پاکستانی وقت کے مطابق 9 بجے سے لے کر 10 بجے تک. اس کے علاوہ نجمہ وائس آف امریکہ کی ٹیلی ویژن پروڈکٹس ہیں. وائس آف امریکہ پاکستانی ویورز کے لیے پاکستان میں اپنے افیلیٹس کے ساتھ, جس میں آج ٹیلی ویژن اور ہم ٹی وی شامل ہیں, ان کے ساتھ ہم 2 پروگرامز پیش کرتے ہیں اپنے دیکھنے والوں کے لیے. آج ٹی وی پر ہمارا جو پروگرام نشر کیا جاتا ہے اس کا نام ہے کہانی پاکستانی, اور کہانی پاکستانی پاکستان میں دیکھنے والوں کے لیے ایک پاکستانی امریکن لڑکی کی نظر سے امریکہ کی تصویر لے کر آتی ہے. बताती है कि अमेरिका कैसा है, उसकी नजरों में कैसा है, वो अमेरिका को कैसे देखती है, अमेरिका में उसके लिए क्या कुछ है, अमेरिका ने उसको क्या दिया है, उसने अमेरिका से क्या लिया है और अब वो अमेरिका के लिए क्या कर रही है और बाकी दुनिया को अमेरिका किस तरह से देखता है या बाकी दुनिया जब अमेरिका आती है तो उनके नजरियात या तासुरात अमेरिका आने से पहले कैसे होते हैं और अमेरिका आने के बाद कैसे होते हैं। इसके अलावा अमेरिका दिखाते हैं हम उस प्रोग्राम में। हमारा जो दूसरा प्रोग्राम है वो हम टीवी पर चलता है और ये प्रोग्राम इसका नाम है Z360 यानी जिंदगी 360। जिंदगी 360 भी कुछ इन्हीं लाइंस पर ये प्रोग्राम भी है। हम अमेरिका के माशरे के बारे में बात करते हैं, लोगों के बारे में बात करते हैं, तालीमी निज़ाम, कानून और तमाम रियासती इदारे किस तरह से काम करते हैं, यहाँ पर लोगों की एक्टिविटीज क्या हैं, आर्ट, म्यूजिक, ड्रामा, इन सारी चीजों पर बात होती है। लेकिन हम इसके साथ साथ खबरों को नहीं भूलते नजमा। खबरों के लिए हम और हालाते हाजरा के लिए जो प्रोग्राम करते हैं वो हर जुमे को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:30 बजे से लेकर 11 बजे तक लाइव नशर किया जाता है वॉइस ऑफ अमेरिका के सैटेलाइट और हमारी उर्दू वेबसाइट पर। अगर ये प्रोग्राम आप इंटरनेट पर देखना चाहें तो हर जुमे को रात 10:30 बजे से लेकर 11 बजे तक ये प्रोग्राम देख सकते हैं। इस प्रोग्राम का नाम है इंडिपेंडेंस एवेन्यू और इसका नाम इंडिपेंडेंस एवेन्यू हमने इसलिए रखा हुआ है कि वॉइस ऑफ अमेरिका के जो वॉशिंगटन की इमारत है, जो हेडक्वार्टर्स है हमारा, ये जिस एवेन्यू पर यानी जिस सड़क पर वाकई है उस सड़क को इंडिपेंडेंस एवेन्यू कहा जाता है और उसकी मुनासिबत से हमने इस प्रोग्राम का नाम इंडिपेंडेंस एवेन्यू रखा हुआ है और इसमें पाकिस्तान के हालात, खित्ते के हालात, अमेरिका के हालात पर गुफ्तगू की जाती है और इत्तफाक से उस प्रोग्राम का मेजबान मैं हूं। और इसके अलावा रेडियो नशरियात की अगर बात की जाए जी तो हम रेडियो मीडियम वेव पर नशर करते हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका की रेडियो नशरियात जो पाकिस्तान में रोजाना 6 घंटे के लिए होती हैं, 5 घंटे के लिए सुबह होती हैं और उसके बाद फिर पाकिस्तान में रात के वक्त के मुताबिक 5 घंटे होती हैं और पाकिस्तान में सुबह के वक्त के मुताबिक 1 घंटे का एक्सक्लूसिव न्यूज शो होता है। वॉइस ऑफ अमेरिका बहुत सारे एरियाज में ब्रॉडकास्ट करता है अपने पाकिस्तानी चाहने वालों के लिए, पाकिस्तान में रहने वालों के लिए, जो कि खबरों, तज्जियों, तबसरों और एंटरटेनमेंट के लिए वॉइस ऑफ अमेरिका पर इन्हिसार करते हैं।
जी जी, थैंक यू वेरी मच आदव, आपने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन हमें दी और ये वाकई ही बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो लिसनर्स के लिए न्यू थी और उन्हें पता चल गया कि वॉइस ऑफ अमेरिका जो है उसकी ब्रॉडकास्टिंग और उनका जो वेव्स हैं वो कहाँ कहाँ तक हैं। तो साहिवाल की अगर हम बात करें या सनराइज पाकिस्तान की हम बात करें तो सनराइज पाकिस्तान, पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम ऐसा है कि अमेरिका, वॉइस ऑफ अमेरिका को जो हमने यहाँ पे लोगों तक इस वॉइस को पहुंचाने की काविश की है और इसके लिए हम शेख जाहिद साहब के बहुत मशहूर हैं कि उन्होंने साहिवाल को ये अपॉर्चुनिटी दी और चौधरी इम्तियाज साहब हमारे स्टेशन मैनेजर जो हैं उन्होंने बहुत कोशिश की और उसमें आपकी जो है हमारे साथ जो कोलैबोरेशन है इसका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने FM 96 साहिवाल को ये ऑनर दी और इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम मिलकर इस प्रोग्राम को कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छा लोगों तक पहुंचा सके। और साहिवाल की बात करें तो साहिवाल इज अ एग्रीकल्चरल सिटी बट वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी क्लीन सिटी एज कम्पेयर टू अदर सिटीज इन पाकिस्तान। मैं ये नहीं कह रही कि पाकिस्तान के बहुत सारे शहर जो हैं वो साहिवाल से बेहतर नहीं है, बल्कि ऐसा है कि साहिवाल इसलिए बेहतर है कि यहाँ पर लिटरेसी रेट जो है वो 100% है, इंस्टीट्यूट्स बहुत अच्छे हैं और यहाँ के लोग जो हैं ब्रॉड माइंडेड हैं और वो जो हैं तरक्की की तरफ, तरक्की की जानेब अपने आप को ले जाने में जो है माशाल्लाह बहुत स्ट्रगल करते हैं और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी अचीवमेंट्स जो हैं वो साहिवाल के रिकॉर्ड में आती हैं। और इसके अलावा मतलब हमारे यहाँ पे जो अगर हम रेडियो की बात करें तो रेडियो को बहुत लाइक किया जाता है, सुना जाता है और इस वक्त FM जो है उसमें एक नाम है FM सनराइज पाकिस्तान का और इसकी लिस्टनरशिप बहुत ज़्यादा है और लोग बहुत लाइक करते हैं हमारे इस चैनल को। तो बाकी साहिवाल की हिस्ट्री के हवाले से इंशाल्लाह कोई कंप्लीट एक प्रोग्राम करेंगे तो उसमें आपको जो है इन्वॉल्व करेंगे।
जरूर, बिल्कुल, और इंतजार रहेगा उस प्रोग्राम का मुझे नजमा। लेकिन आपको साथ साथ ये भी बताना है कि इस प्रोग्राम में हमने थोड़ा बहुत म्यूजिक भी प्ले करना है, तो ऐसा करते हैं कि चूंकि इब्तदाई प्रोग्राम है और इफ्तिताही गाना चलना है तो वो आपकी मर्जी का चलना चाहिए और मैं थोड़ा सा पाकिस्तान से दूर होने की वजह से पाकिस्तान के म्यूजिक सीन से इतना ज्यादा वाकिफ नहीं हूं। जब पाकिस्तान में था तो उस वक्त तो मुझे पता था कौन क्या है, कैसा गाता है, अच्छा गाता है, बुरा गाता है या बहुत बुरा गाता है, लेकिन अब मुझे इतना नहीं पता तो म्यूजिक के लिए मैं आप पे डिपेंडेंट हूं। आप जो भी म्यूजिक प्ले करना चाहेंगे मैं वो सुनने के लिए तैयार हूं।
जी बिल्कुल, इंशाल्लाह आपको अच्छा म्यूजिक सुनने को मिलेगा. और अब भी पाकिस्तान में बहुत अच्छे सिंगर्स मौजूद हैं जो बहुत अच्छे सॉन्ग्स जो हैं वो हमें दे रहे हैं और हम लोग सुन भी रहे हैं. बाकी बात आपने की बुरे सिंगर्स की, तो वो अब भी बहुत बुरा गाने वाले मौजूद हैं, यू डोंट वरी अबाउट दैट. और वो लोग आज भी उतना ही बुरा गाते हैं जितना शायद पहले गाते थे, या शायद अब उन्होंने रिप्लेस करके कुछ अपनी आगे कुछ और लोगों को जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया है, लेकिन वो उनकी तादाद बहुत कम है. अच्छा गाने वालों की और अच्छी पोएट्री की बहुत अभी भी जो है माशाल्लाह बहुत ज्यादा तादाद है. और आज के सिंगर्स जो हैं वो बहुत अच्छा गाते हैं, सुरीले हैं. यहाँ पर हर किस्म का म्यूजिक जो है हमेशा से गाया भी जाता है, सुनाया भी जाता है, और उसकी जो है वो शायरी भी की जाती है. उसमें फोक हो गया, उसमें आपका जो है क्लासिकल म्यूजिक हो गया, तो ये सब यहाँ का कल्चरल म्यूजिक जो है उसका भी हमेशा तड़का हम लगाते रहते हैं. तो इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में भी आपको पाकिस्तान की एक वो जो खूबसूरत शायरी और एक म्यूजिक है वो सुनने को मिलेगा. तो अभी हम एक सॉन्ग सुने फिर.
जी हाँ बिल्कुल
चले जी, हम एक सॉन्ग सुनते हैं और लिसनर आप हमारा साथ दीजिएगा. FM 96 साहिवाल और वॉइस ऑफ अमेरिका इस वक्त आप सुन रहे हैं इन पाकिस्तान एंड ऑल्सो इन अमेरिका. आप मेरे साथ हैं और हमारा साथ इंशाल्लाह आपके साथ रहेगा जी 10 बजे तक एक खूबसूरत गाने की तरफ.
जी जी सर बोले. चले ये बेहतर हो गया, ये बता
ठीक है. वैसे पहले हमें यही कहा गया था कि आप उर्दू इंग्लिश पंजाबी तीनों में बोल सकते हैं. हेलो
सर, उर्दू में ही बात करनी है ना.
जी लिस्टर, आप सुन रहे थे एक खूबसूरत सॉन्ग और इस गीत को शामिल किया हमने आतिफ की आवाज में. और आतिफ इस वक्त हमारे साथ जो है पाकिस्तान के एक बहुत पॉपुलर सिंगर हैं. और आतिफ हमारे साथ इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं जो साथ दे रहे हैं, और ये आतिफ असलम थे जो गाना गा रहे थे. तो आतिफ आपने सुना सॉन्ग.
जी हाँ बिल्कुल, आतिफ असलम इज अ नोन नेम न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी. बहुत शोहरत है खासतौर पर जो इन्होंने इंडियन फिल्म्स के लिए गाने गाए हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुए. यहाँ अमेरिका में भी इनके कॉन्सर्ट्स को बहुत पसंद किया जाता है. तो ही इज़ अ पॉपुलर नेम.
यस जी बिल्कुल ऐसा ही है. और उन्होंने बहुत कम अरसे में बहुत शोहरत हासिल की है. और इसके अलावा भी मतलब जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि बहुत सारे न्यू सिंगर हैं जिन्होंने काफ़ी स्ट्रगल की और आज उनका एक नाम है इन पाकिस्तान और बाकी दूसरे हमारे जो हमसाया मुल्क हैं वहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी जाकर जो है अपना नाम कमाया है. अच्छा आतिफ, अभी आप जो है इस वक्त चूंकि हमारा ये आज का प्रोग्राम थोड़ा सा लाइट था तो हम इसको लाइट ही चला रहे हैं, मतलब हल्का फुल्का सा है और उसमें कुछ कोई ऐसी बात जो आपको आज मतलब इस आज के प्रोग्राम में ऑनियर आने से पहले आपके दिमाग में थी, आप सोच रहे थे कि जब मैं ऑनियर जाऊंगा पाकिस्तान में मेरी आवाज सुनी जाएगी, तो उस वक्त मैंने क्या कहना है और मुझे क्या कहना चाहिए?
देखिए खैर क्योंकि प्रोग्राम पहले भी चल रहा था और इस्लामाबाद से चल रहा था, इसके अलावा कभी कभी हम इस प्रोग्राम को नेटवर्क पर भी किया करते थे, लेकिन उसके बाद कुछ ब्रेक आ गया और ब्रेक आने के बाद तकरीबन 5-6 महीने का ब्रेक आने के बाद हम इसको दोबारा साहिवाल के स्टेशन से शुरू कर रहे हैं। तो यकीनन बहुत सारी चीज़ें थी जो जहन में थी, बहुत सारी बातें थी जो जहन में थी, सोचा तो यही था कि सबसे पहले कुछ साहिवाल के लोगों को सुनने की कोशिश करेंगे और फिर बोलने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए जब आपसे भी हम ये प्रोग्राम को के लिए मीटिंग कर रहे थे तो मैंने आपसे और बिलाल साहब से गुजारिश की थी कि भाई मैं साहिवाल के बारे में इतना ज़्यादा मालूमात नहीं रखता, तो आप लोग मुझे वहाँ के बारे में बताएंगे। और जहाँ तक ये ताल्लुक़ है कि मैंने साहिवाल के लोगों से क्या बात करनी है, तो बहुत सी बातें हैं जो वक्त के साथ साथ करते रहेंगे, कुछ कहेंगे, कुछ सुनेंगे, कुछ सोचेंगे, कुछ समझेंगे और कुछ सीखेंगे भी साहिवाल से, क्योंकि साहिवाल, जैसे आपने जिक्र किया कि साहिवाल की एक अच्छी और बहुत अच्छी बात यह है कि वहाँ का लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है। साहिवाल ने बड़े बड़े शोरा पैदा किए हैं। साहिवाल एक एग्रीकल्चरल सिटी है, लेकिन उसके साथ साथ साहिवाल ने अपने आप को साफ सुथरा रखने के लिए, ग्रीन रखने के लिए बहुत कुछ किया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे आपसे और साहिवाल से सीखनी है। जहाँ तक अमेरिका के बारे में बताने की बात है, आज अमेरिका में ख़ास तौर पर जिस अमेरिका के जिस कोस्ट पर मैं रहता हूँ, इसको ईस्ट कोस्ट कहते हैं, यहाँ पर बर्फबारी जारी है। आज सुबह सवेरे से यहाँ बर्फ पड़ना शुरू हो गई है और वॉशिंगटन और इसके साथ जुड़ी रियासतों में इतनी ज़्यादा बर्फ नहीं पड़ रही, लेकिन फिर भी मालूमात के मुताबिक अब तक तकरीबन कोई 3-4 इंच के करीब सुबह से बर्फ पड़ चुकी है और बर्फ पड़ने का सिलसिला अभी जारी है। बहुत खूबसूरत लगता है वॉशिंगटन का शहर, इसके इर्द गिर्द वॉशिंगटन का जो एरिया है नजमा, आपके और आपके सुनने वालों के लिए मैं बताऊं कि इट्स ए ट्राई स्टेट एरिया, हम इसको ट्राई स्टेट या मेट्रोपॉलिटन एरिया कहते हैं। वॉशिंगटन के साथ वॉशिंगटन एक रियासत भी है और शहर भी है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया जिस रियासत में ये शहर है, ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया को खास तौर पर रियासत का दर्जा दिया गया था क्योंकि यहाँ अमेरिका का दारुल हुकूमत बनाया जाना था। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया कदीम अमेरिका में एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो जब अमेरिका के दारुल हुकूमत को इस जगह पर मूव करने का प्लान किया गया और उसके लिए जगह का इंतखाब किया गया, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया की जो टेरिटरी है, ये इसकी जो पड़ोसी रियासतें हैं मैरीलैंड और वर्जीनिया, उन्होंने अपनी टेरिटरी में से ये इलाका दिया इस दारुल हुकूमत को बनाने के लिए। तो बेसिकली इट्स ए ट्राई स्टेट एरिया, इसके इर्द गिर्द तकरीबन 50-60 मील का जो रेडियस है वॉशिंगटन के इर्द गिर्द, उसमें जो ज़्यादातर लोग बसते हैं वो वॉशिंगटन और वॉशिंगटन के मज़ाफात में काम करने के लिए आते हैं, उनका रोज़गार, उनकी तालीम, उनकी ज़िंदगी की बाकी चीज़ें इस शहर से जुड़ी हुई हैं। जैसे किसी भी इलाके के करीब कोई एक बड़ा शहर होता है जहाँ पर सारे बिजनेसेस होते हैं, वहाँ के इर्द गिर्द के इलाकों के लोगों की ज़िंदगी उस शहर से जुड़ी होती है, तो इसी तरह वॉशिंगटन या ये जो ट्राई स्टेट का एरिया है, इसमें जो करीब 50-60 मील का जो इलाका है, उसमें जितने भी लोग बसते हैं उनकी ज़िंदगी इस शहर से जुड़ी हुई है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के लिए काम करते हैं, पढ़ते हैं, या बिजनेस करते हैं, या हुकूमती इदारों में काम करते हैं, या हुकूमती इदारों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनकी ज़िंदगी इससे जुड़ी हुई है। तो यहाँ बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। हर साल वॉशिंगटन में एक मौसम में तकरीबन 4-5 मरतबा बर्फबारी होती है और एवरेज स्नोफॉल यहाँ का इस साल का जो है वो बताया जा रहा है कि कोई 15-16 इंच बर्फ गिरेगी वॉशिंगटन में। लेकिन ये जो वेदरमैन होता है, मैं अक्सर कहता हूँ कि वो एक वाहिद आदमी है जो झूठ बोल के भी बिल्कुल ठीक रह सकता है, जो अपना काम ना भी करे और गलत भी करे तो उसकी नौकरी को कोई मसला नहीं होता।
बिल्कुल, और लोग उसको मानते भी हैं,
लोग उसको मानते भी हैं क्योंकि मजबूरी है। तो हमारे यहाँ तो बर्फबारी हो रही है। वैसे मैं चाह रहा था कि आपके सुनने वाले जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं उनसे एक सवाल पूछा जाए, और सवाल ये पूछा जाए कि सख्त सर्दियों में आप छुट्टियां गुजारने के लिए किस کسی گرم علاقے میں جانا چاہیں گے یا مزید سرد علاقے میں جانا چاہیں گے؟ کیونکہ برف کا بھی ایک اپنا مزہ ہے نا. پاکستان میں تو ہر جگہ پر برف نہیں پڑتی, سردی تو پڑتی ہے. خاص طور پر جو ہمارا لوور اور سینٹرل پنجاب کا جو ایریا ہے اس میں تو اچھی خاصی سردی پڑ جاتی ہے. تو خاص طور پر اب جو ساہیوال کے رہنے والے ہیں ان سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ سردیوں میں ویکیشنز کے لیے یا چھٹی گزارنے کے لیے برفیلے علاقوں میں جانا چاہیں گے, یعنی پاکستان کے جو شمالی علاقے ہیں یا مری کا جو سیاحتی مقام ہے اس پر جانا چاہیں گے یا کہ کسی گرم علاقے میں جانا چاہیں گے؟
جی بالکل, ویری مطلب یہ بہت مزے کا سوال ہے, بڑا دلچسپ کوسچن ہے. کیونکہ اکثر ہم جب گرمیوں میں پروگرام کرتے ہیں تو ہم اس وقت یہ پوچھتے ہیں کہ جی آپ چھٹیاں گزارنے کون سے ٹھنڈے علاقے میں جائیں گے.
بالکل
آج تک یہ کم ہی پوچھا گیا ہے کہ سردیوں میں آپ کہاں جائیں گے. تو لسنر سوال ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے, اور جیسا کہ آتف نے پوچھا ہے کہ سردیوں میں آپ اپنی چھٹیاں, جیسے کہ آج کل چھٹیاں چل رہی ہیں, ونٹر ویکیشنز ہیں, تو یہ گزارنے کے لیے آپ بچوں کو کس علاقے میں لے کے جائیں گے؟ ویسے یہاں پر سردی تو کافی پڑ رہی ہے اور دھند کافی پڑ رہی ہے. ابھی بھی میں جب آ رہی تھی اسٹوڈیو کی طرف تو بہت تھوڑے سے ٹائم میں ہی دھند پڑنا شروع ہو گئی, حالانکہ 7:30 بجے تک تو کافی ویدر کلیئر تھا, لیکن اس کے بعد دھند پڑنی شروع ہو گئی. اور سردی ایک دم سی ہوتی ہے, کچھ 2-3 دن سے یہاں دوپہر میں دھوپ نکلتی ہے لیکن شام میں پھر وہی ٹھنڈ کا عالم ہوتا ہے. تو لوگ اس سردی کو انجوائے بھی کرتے ہیں چونکہ زیادہ عادی نہیں ہوتے لوگ سردی کے, یہاں پر گرمی کا پیریڈ زیادہ رہتا ہے, تو وہ اس کی وجہ سے سردی ایک دم آنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اریٹیٹ بھی ہوتے ہیں, یعنی اس میں کچھ ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں اور کچھ جو ورکنگ ایشوز ہیں کہ آپ اگر جابینز ہیں یا آپ کے کوئی بزنس ہیں تو اس میں کافی ایشوز ہوتے ہیں, تو وہ لوگ اس کو بہت
بالکل کرتے ہوں گے. اور بہت ساری انکنوینئنس ہوتی ہے, جیسے آپ نے کہا جی کہ بہت مرتبہ لوگ اریٹیٹ ہوتے ہیں, اس کی وجہ انکنوینئنس ہے. جیسے میں ابھی کہہ رہا تھا نا کہ برف پڑی ہوئی تو بہت اچھی لگتی ہے لیکن اس کے بعد جو بھگتنا پڑتا ہے وہ بالکل اچھا نہیں لگتا, بیکاز سڑکیں برف سے بھر جاتی ہیں. خیر امریکہ میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ یہاں جو لوکل گورنمنٹس ہیں وہ اپنا کام کرتی ہیں اور بہت ذمہ داری سے کرتی ہیں. جب بھی برف کی پروڈکشن آتی ہے تو لوکل گورنمنٹس اس سے پچھلی رات ہی اپنے وہ ٹرکس سارے نکال کر اہم شاہراہوں پر اور نیبرہڈز میں کھڑے کر دیتی ہیں, جن کا کام ہوتا ہے کہ وہ گری ہوئی برف کو راستے سے اور سڑکوں سے ہٹائیں, اور اس کے اوپر ایک خاص سالٹ ہوتا ہے جو جس کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے سڑکوں پر, تو وہ سالٹ پھر برف کو سڑکوں کے اوپر جمنے نہیں دیتا, تو وہ رات سے ہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ایک بہت اچھی بات ہے. لیکن آپ کو امریکی قوانین یہ کہتے ہیں کہ اپنے گھر کے سامنے کا راستہ آپ نے خود صاف کرنا ہے, اپنے گھر کے ساتھ جو فٹ پاتھ بنی ہوئی ہے اس کو آپ نے خود صاف کرنا ہے, اور اگر اس راستے سے یا اس فٹ پاتھ سے کوئی بھی آدمی گر کر زخمی ہو جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری گھر کے مالکوں پر ہے, گھر میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے اوپر ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کے سامنے کا راستہ صاف کیوں نہیں کیا, اور جو شخص اس راستے سے اگر پھسل کر گر جائے اور خدا نخواستہ اس کو کچھ ہو جائے تو وہ اس گھر کے رہنے والوں پر کیس کر سکتا ہے کہ ان کی غفلت کی وجہ سے میرے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا ہے. تو جو سسٹم ہے وہ شہریوں کو جہاں اتنی ساری فیسلٹیز دیتا ہے نجمہ, وہیں پر انہیں ان کی ذمہ داریوں کی بھی یاد دلاتا ہے کہ حکومت اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے, کچھ ذمہ داری شہریوں کی ہے اور وہ ذمہ داری شہریوں کو ہر حال میں پوری کرنی ہے. تو ایک بڑا مزے کا جو منظر ہوتا ہے نا نجمہ, وہی ہوتا ہے کہ جیسے ہی برف پڑتی ہے سبھی لوگ برف پڑنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں, جب برف پڑ جاتی ہے تھم جاتی ہے تو اس کے بعد ہر کوئی موٹی سی جیکٹ پہن کے سر کے اوپر ٹوپی لگا کے اچھے اچھے بوٹ پا کے باہر آ جاتا ہے بیلچہ چھک کے, اور پھر سارے لوگ ایک بیلچہ اٹھا کے ایک سڑک وہ برف جو ہے نا اس کو سائڈ پر ڈالنے پر لگ جاتے ہیں, اور پھر تقریباً 2-3 گھنٹے اسی طرح سے گزر جاتے ہیں. اس دوران ویسے جو سیزنز کیا کہتے ہیں اس کو, جو دہاڑی دار مزدور ہوتا ہے نا امریکہ میں, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایسا بھی کرتے ہیں کہ ایسے موقعوں کا انتظار کرتے ہیں اور وہ گلیوں میں چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں اس وقت, اور وہ $10-$25-$30 لے کے تو لوگوں کے گھر کے سامنے سے برف ہٹا دیتے ہیں. سو دیٹس ایزی منی.
वेरी गुड, ये भी एक इनकम सोर्स है.
जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल है. लोग जो अपने काम पर नहीं जा सकते, क्योंकि अमेरिका में भी बहरहाल बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है जिसकी डेली आमदन या महाना आमदन अमेरिकन एवरेज से काफ़ी नीचे है, और वो लोग जो कि इनसार कर रहे होते हैं रोज़ाना की जॉब्स का, अगर इतने शदीद मौसम में उनको अपनी रोज़ाना की जॉब ना मिल सके तो फिर वो इस तरीके से पैसे बना लेते हैं.
वेरी गुड. अच्छा आतिफ, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, और बहुत मतलब ये खैर ऐसी चीजें हैं जो हम सुनते रहते हैं, लेकिन इस तरह जब कोई वहां पर रहकर और उन चीजों को खुद देखता है, खुद महसूस करता है, तो वो क्या कहते हैं कि वो ज्यादा बेहतर और ज्यादा उस पर यकीन आता है कि वाकई ये बहुत अच्छी बात है.
जी हाँ, मैंने खुद ये किया हुआ है, इसलिए आप मुझ पर यकीन रखें. मुझे भी अपने घर के सामने का रास्ता वो बेलचा उठा के खुद ही साफ करना पड़ता है, बिकॉज आई हैव टू डू इट. अगर मैं नहीं करूंगा तो मैं फंस सकता हूँ.
फीसद यकीन है आप भी, आपकी बात पे. तो इसी तरह जैसे आपने हमारे पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात का जिक्र किया, जैसे मरी है, कागान नारान है, तो ये अप्रैल मई में इत्तफाक हुआ कागान नारान जाने का, तो वहां पर ग्लेशियर्स जो पिघल रहे थे और बर्फबारी का आलम, क्योंकि इस सीजन में जैसे आजकल का मौसम है तो कागान नारान ब्लॉक कर दिया जाता है, वहां पर लोगों का जाना जो है बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहां पर ग्लेशियर बहुत गिरते हैं तो हादसात का खतरा होता है, जिसकी वजह से लोगों को रोक दिया जाता है और कागान से पीछे ही रास्ता जो है नारान से बंद कर दिया जाता है. तो सिर्फ मरी तक लोग जा सकते हैं, और या जो है सवात वगैरह वहां तक लोगों की अप्रोच है, उधर उन इलाकों में जाना जरा नामुमकिन ही है. तो वहां पर भी मतलब जैसे ही मौसम थोड़ा खुलना शुरू होता है, बर्फ पिघलनी शुरू होती है, तो वहां के जो लोग हैं, वहां की लोकल गवर्नमेंट है या वहां के जो हमारी आबादी है, जो लोग वहां रहते हैं, तो वो उन ग्लेशियर्स को जो है वो पिघलाने के लिए वो कुछ उसमें कोई लोहे की चीज दे देते हैं, कोई ईंट रख देते हैं, इस तरह की चीज जो सन रेजेस को एब्जॉर्ब करके उस बर्फ को जो है वो पिघला सके.
सही.
तो
सही.
वो प्रोसीजर जो है वो बड़ा एक इजी वे होता है, मतलब अगर आपके पास बड़ी क्रेन्स नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है. तो मैं कार्डियोलॉजी को बड़ा अप्रिशिएट कर रही थी देख के, कि उन्होंने कमाल किया हुआ जी कि बर्फ ग्लेशियर के अंदर कोई ना कोई चीज ऐसी रखी हुई है जिसकी वजह से बर्फ जो है पिघल रही है, और वो आहिस्ता आहिस्ता ग्लेशियर जो है वहां से कट के रास्ते क्लियर हो रहे हैं.
जी बहरहाल, इंसान जो है ना नजमा, वो कहा जाता है कि उसको जब किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो वो उसका कोई ना कोई हल निकाल ही लेता है, और बड़ी बड़ी मशीनरी ना हुई तो क्या, लेकिन जिंदगी चलाने के लिए लोग खुद साख्ता तरीकों के जरिए भी अपना रास्ता बना लेते हैं.
जी बिल्कुल.
तो मेरा ख्याल है एक गाना सुना जाए, और आप फिर आपने हमने सवाल तो कर दिया सुनने वालों से कि ये बताइए कि आप सर्दियों में छुट्टियां गुजारने के लिए मजीद ठंडे इलाके में जाना चाहेंगे या किसी गर्म इलाके में जाना चाहेंगे, लेकिन आपने नंबर नहीं बताया सुनने वालों के लिए कि वो किस नंबर पर कॉल करें.
जी, आपकी गुफ्तगू चल रही थी और बड़ी अच्छी बातें चल रही थी, तो मैंने इंटरप्ट नहीं किया. अभी मैं बताऊंगी लिसनर्स को कि आप हमें मैसेज कर सकते हैं और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, और मैसेज करने के लिए आप मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइएगा, वहां पे 96 लिखिएगा, 96 लिखिएगा, उसके बाद एक लफ्ज का वक्फा देना है यानी स्पेस देनी है, और फिर आपने हमारे क्वेश्चन, हमारे सवाल का जवाब लिखना है, और अपने नाम और पते के साथ आपने हमें भिजवा देना है हमारे एड्रेस पे 8282 पे 8282 पे. और फोन कॉल्स भी जो है वो भी हम रिसीव करेंगे, लाइव कॉल्स आपकी जो है ली जाएंगी. तो कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0404011196, 0404111 मिलाएंगे आप. अब उर्दू में उसको मैं 111 कहने लगी थी, तो 3 times 1 मिलाएंगे, 111 और 9696 मिलाएंगे, तो आपकी कॉल जो है हमारे स्टूडियो में आ जाएगी. और अभी एक सॉन्ग की तरफ चलते हैं, बहुत खूबसूरत कंपोजिशन जिसको बाद में इंडिया में कॉपी भी किया गया, लेकिन जो एक्चुअली कंपोजिशन हमारे पाकिस्तान में बनी हुई आतिफ, यू विल एंजॉय.
थैंक यू.
तो और तमाम लिसनर्स को भी सुनवाते हैं. جی لسنر, بہت خوبصورت کمپوزیشن مہندی حسن اور ناہید اختر کی آواز میں آپ سن رہے تھے, لیجنڈز ہمارے پاکستان کے. اور عاطف, آپ نے انجوائے کیا اس گیت کو؟
جی ہاں بالکل, بہت ہی خوبصورت آوازیں, بہت ہی خوبصورت گیت, جیسے آپ نے کہا تھا بہت ہی خوبصورت کمپوزیشن. بہت سنا ہے اس گانے کو بھی, اور اب اگر میں یہ کہوں کہ بہت سنا ہے مہندی حسن صاحب کو, اور تو یہ بہت ہی بڑی حماقت ہوگی اگر میں یہ کہہ دوں. یقیناً مہندی حسن صاحب کا نام تو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے.
بالکل ایسا ہی ہے, اور یہ واقعی یہ وائسز ہیں, وہ ان کی جو ان کی گائیکی ہے وہ آج بھی دل کے تاروں کو چھو جاتی ہے, اور انسان کسی اور ہی دنیا میں چلا جاتا ہے سن کر.
جی ہاں, دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ تا عمر رہتی ہیں. اچھا میوزک, اچھی کمپوزیشن, اچھی آوازیں, اچھے گانے, اچھی فلمیں, اچھے ڈرامے جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ تمام عمر کے لیے ہمارے ذہن پر نقوش چھوڑ کر جاتے ہیں. چاہے وہ کچھ دیر کے لیے ہماری شارٹ ٹرم میموری سے فیڈ ہو جاتے ہیں, لیکن پھر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جو ہی آپ ان کے بارے میں سنتے ہیں, ان کا تذکرہ کرتے ہیں, تو ان کی آوازیں, ان کی شکلیں, ان کے سر, سب کچھ کانوں میں دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں.
جی بالکل ایسا ہی ہے, اور جیسا کہ ہمارے یہاں پہ بہت سارے چینلز پہ پروگرام چلتے ہیں اولڈ از گولڈ اور اولڈی گولڈی کے نام سے, یعنی مختلف ان کو یہ ہے کہ جو پرانا میوزک ہے 80s اور 70s کا, اس کو سنا جاتا ہے اور اس کو لائک کیا جاتا ہے. اور اس لیے جو ہے یہ آج بھی, مطلب اگر آپ پرانے گیت سنیں تو ان میں وہی چاشنی ہے اور وہی دل کو لبھا دینے والی جو شاعری ہے. خیر یہ ہمارے پاس بہت سارا جو ہے ذخیرہ ہے ہمارے بہت اچھے سنگرز کا, بہت اچھی جو ہے میوزک کا, تو انشاءاللہ یہ جو ہے میوزک ہم سنواتے رہیں گے اپنے لسنرز کو. اور لسنرز ہم نے ایک سوال چھوڑا ہے آپ کے لیے, اور وہ سوال یہ ہے کہ آج کل سردیاں ہیں اور سردیوں کے موسم میں چھٹیاں گزارنے کے لیے آپ کون سے علاقے میں جانا پسند کریں گے؟ اور وائس آف امریکہ اور سن رائز پاکستان اس وقت آپ کی آواز جو ہے وہ سنی جا رہی ہے دونوں ملکوں میں, اور آپ اپنی آواز میں اپنے مطلب جو ہے کالز بھی ہمیں کر سکتے ہیں, اور آپ کی وائس جو ہے وہ بھی سنی جائے گی. اور کال کرنے کے لیے ہمارا رابطہ نمبر ہے 0404-111-96. اور ایک کال کی طرف ہم جا رہے ہیں عاطف, اور کال ہم
کریں گے. ضرور.
ہلو,
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟
جی میں قصور عباس بات کر رہا ہوں, چک نمبر 79 سے.
قصور عباس چک 79B سے. جی جی قصور, آپ پروگرام سن رہے ہیں, کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟
بہت اچھا لگ رہا ہے, اور آپ کی وائس ہے وہ بھی بہت اچھی ہے, اور آپ کی جو باتیں ہیں وہ بھی بہت اچھی لگ رہی ہیں.
اچھا, میرے ساتھ ایک اور ہمارے پریزنٹر اس وقت امریکہ میں آپ سے بات کر رہے ہیں, تو ان سے آپ مطلب عاطف ہمارے لسنر ہیں, جی آپ ان سے بات کیجیے گا.
جی میں ان کی آواز سن رہا ہوں. قصور عباس صاحب بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں کال کیا اور آپ نے اپنی رائے سے آگاہ کیا, اور میں میرے بھی جو میری آواز آپ کو بہت کم آ رہی ہے, اس کے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا. میں میری جتنی میرا جتنا والیوم ہے میں اس کو میکسیمم لیول پر استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اس سے زیادہ کر نہیں سکتا. بہرحال اگر آپ کو میری آواز کم آ رہی ہے تو میں یہ سوچ کے یہ کہہ دیتا ہوں کہ آپ کی کال کا بہت شکریہ.
جی عاطف آپ کی آواز جو ہے وہ اس لیے شاید کم جا رہی ہے کہ وہ سننے والے جو ہیں وہ کنسنٹریٹ نہیں کر رہے.
اچھا, لیکن اب ظاہری بات ہے آپ کے ہوتے ہوئے وہ مجھ پہ تو کنسنٹریٹ نہیں کریں گے.
نہیں ایسی بات نہیں ہے قصور, میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ ان آج کل سردیاں ہیں, گرمیوں میں تو آپ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم مری چھٹیاں گزارنے جائیں گے, ہم یہ کریں, تو سردیوں میں چھٹیاں گزارنے کا اگر آپ کو موقع ملے تو آپ کس علاقے کو پریفر کریں گے؟
اسے زیادہ تر موسٹلی جو اگر آپ میری رائے لینا چاہیں گے تو جو ملتان کا علاقہ ہے وہ تھوڑا سا نا اس لحاظ سے تھوڑا سا یعنی کہ گرم ہوتا ہے.
اچھا مطلب آپ گرم علاقے
گرم ہوتا ہے تو مجھے وہ زیادہ لائک
ہے. اچھا آپ گرم علاقے میں جانا پسند کریں گے. اچھا عاطف یہ کچھ تھوڑے سے مطلب کیا کہنا چاہیے, اب برف باری کو دیکھنے والے اور اس کو انجوائے کرنے والے
ظاہری بات ہے ہر کسی کی اپنی اپنی پسند ناپسند ہے, اپنی اپنی چوائسز ہیں, پریفرنسز ہیں. اگر وہ ان کو سردی اچھی نہیں لگتی تو ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے, وہ چاہتے ہیں کہ وہ سردی سے بچنے کے لیے کسی گرم علاقے میں چلے جائیں, اور انہوں نے ذکر کیا ہے ملتان کا, اور ملتان ویسوں تے ام کھاسوں, तो आप जरूर वहां जाइए. वैसे आमों का मौसम भी उसकी भी आमद आमद है. कुछ 3-4 महीने में आमों की सप्लाई शुरू हो जाएगी. और मैं आपको आमों से मुझे याद आ गया कि हम लोग अब इतने खुशकिस्मत हैं अमेरिका में बसने वाले पाकिस्तानी कि अब हमें पिछले 2 साल से यहाँ अमेरिका में पाकिस्तानी आम दस्तियाब हैं.
वेरी गुड वेरी गुड. ये तो बड़ी अच्छी बात है क्योंकि पाकिस्तान का आम जो है वो पूरी दुनिया में मशहूर है. और वैसे पता नहीं है, मैंने तो खैर बाहर के आम जो है वो नहीं खाए, लेकिन पाकिस्तान के जितने भी मुख्तलिफ इलाकों में आम मिलता है तो उसका टेस्ट, उसका जो है वो लज्जत एक अलहदा ही है. तो मुल्तान का जिक्र किया इन्होंने, तो मुल्तान जो है वो औलिया कराम का शहर है और थोड़ा सा गर्म मरतूब इलाका है. और गर्मी
हमारे एक वजीर आजम भी रहे हैं वहां से.
जी बिल्कुल, यूसुफ रजा गिलानी जो हैं वो मुल्तान से बिलोंग करते हैं. और मुल्तान भी एक खूबसूरत शहर है. पाकिस्तान का हर शहर ही खूबसूरत है, लेकिन मुल्तान इस हवाले से कि वहाँ पर जो दरबार हैं वो और ज्यारतें लोग जो करने जाते हैं, दरबारों पे जाना और ये, तो वो एक बड़ा एक अच्छा लगता है. तो हमारे पास एक और कॉल है और हम एक और कॉल रिसीव करेंगे. आते
जी जरूर.
जी अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. जी सॉरी, नाम दोबारा बताइएगा.
सादिया खान.
सादिया खान साहिवाल से बात कर रही हैं. जी सादिया, क्या कहना चाहेंगी आप, हमारे सवाल का जवाब देना चाहेंगी और कुछ और कहना चाहेंगी?
जी सवाल का जवाब देना चाहूंगी.
जी जी अच्छा, साहिवाल ही अच्छा लगता है.
ब्यूटीफुल,
वेरी गुड. जी देखें जी, ये है कहते हैं ना, अपने घर की बात ही कुछ और है. तो सादिया, इस वक्त आपकी आवाज जो है अमेरिका और पाकिस्तान में सुनी जा रही है. तो मेरे साथ मेरे जो को प्रेजेंटर है आतिफ अमेरिका में, इस वक्त आपको आपको और हम सबको. जी जी
वालेकुम अस्सलाम सादिया, बहुत शुक्रिया आपने जो बात की कि आप साहिवाल में सर्दियों की छुट्टियां गुजारना चाहती हैं, आपको यही अच्छा लगता है. मैं उसकी वजह पूछ सकता हूं, उसकी वजह क्या है?
साहिवाल की वजह क्या है?
जी साहिवाल में ही आप छुट्टियां क्यों गुजारना चाहेंगी, उसकी कोई वजह होगी ना? आपको साहिवाल अच्छा लगता है या आप ये चाहती हैं कि आप अपने घर वालों के साथ छुट्टियां गुजारें? आपको ये अच्छा लगता है कि आप अपने घर वालों के पास हों, उनके साथ रहें?
आते वो कह रही हैं कि साहिवाल मुझे शुरू से ही बहुत अच्छा लगता. मतलब कितना शुरू से सादिया?
नींद के बचपन से ही. अच्छा, जैसे मैंने अपना होश संभाला.
तो अब आप बचपन की हो गई हैं?
नहीं, आप मैं 19
ईयर. माशाल्लाह माशाल्लाह. खैर आप अभी भी बहुत छोटी हैं सादिया, आप अभी भी 19 ईयर्स इज नथिंग. आई मीन अभी भी आपका बचपन ही चल रहा है, कंसिडर इट बचपन. आप इतनी बड़ी नहीं हुई हैं.
जी बिल्कुल, टीन एज बचपन में ही काउंट होती है. लेकिन वो मतलब माशाल्लाह जो लड़कियां हैं ना, असल में आतिफ यहाँ पर पाकिस्तान में ये इशू है कि लड़कियां बहुत जल्दी अपने आप को, ना सिर्फ लड़कियां खुद बल्कि पेरेंट्स जो है वो बच्चियों को जल्दी बड़ा समझना शुरू कर देते हैं और उनको ये बताते हैं कि इतराफ करवाते हैं कि आप अब बड़ी हो रही हैं.
जी बहरहाल अब हर इलाके में, मेरा ख्याल सादिया कुछ कह रही हैं.
जी जी सादिया बोलें.
जी मैं ये बताना चाहूंगी कि पेरेंट्स ने नहीं समझा कि आप बड़े हो चुके हैं, बल्कि हमने खुद समझा कि हम बड़े हो चुके.
वेरी गुड.
क्या बात है सादिया, यू शुड गेट एन अवार्ड ऑन इट. आप इतनी समझदार भी हो गई हैं बड़े होने के साथ साथ कि आपने खुद ही ये रियलाइज कर लिया है कि अब आप बड़ी हो गई हैं. वैसे सादिया आप क्या पढ़ रही हैं? मैं आई अज्यूम आप पढ़ाई कर रही हैं, क्या पढ़ती हैं आप, क्या पढ़ रही हैं?
मैंने फिलहाल अभी तो मैट्रिक ही
किया है. अभी तक सिर्फ मैट्रिक ही किया है
और उसके बाद नई शादी हो गई है तकरीबन. मैंने
ओह माय गॉड,
कुड़िए ना कर, एन्ने
चटके ना ला सानू. बहरहाल बहुत अच्छी बात है कि आतिफ आपने सुना.
फिर तो बेटा आप वाकई बहुत बड़ी हो गई हैं, आपने सही कहा था कि आप बड़ी हो गई हैं. बहरहाल सादिया आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. और शादी तो आपने कर लिया, अब एक और डिग्री भी कर लें.
हाँ बिल्कुल, अब आगे भी जो एजुकेशन वो
हाँ जी,
हासिल
मतलब
करनी,
शादी के बाद भी पढ़ा जा सकता है. लाजमी तो नहीं है ना कि शादी कर ली तो पढ़ाई खत्म कर दें.
मतलब करूंगी, अभी 2 साल पहले मैट्रिक किया तो अब तो एफए की तैयारी करनी चाहिए.
माशाल्लाह माशाल्लाह, वेल गुड लक, वी विश यू ऑल द बेस्ट सादिया. थैंक यू.
جی سعدیہ بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, آپ نے کال کی, پروگرام میں شامل ہوئی, خوش رہو, جیتی رہو, اوکے, اللہ حافظ. جی عاطف,
جی سرپرائزڈ نجمہ, میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا.
آئی ایم آلسو سرپرائزڈ, ویسے میں اتنی سرپرائز نہیں ہوں کیونکہ یہ اس طرح کی باتیں میں اکثر سنتی رہتی ہوں کہ جی فلاں کی شادی جو ہے وہ 14 سال کی عمر میں ہوگی اور 15 سال کی عمر میں. تو ہمارے پاس ایک اور کال ہے, تو میری کوشش ہے کہ ہم میکسیمم کالرس کو جو ہے پروگرام میں شامل کریں. تو ایک اور کال ریسیو کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, اللہ کا شکر, آپ سنائیں. جی کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟
جی میں عمران بات کر رہا ہوں, سہیوال سے.
عمران
جی,
جی عمران, عاطف سوال آپ ان سے پوچھیے.
جی عمران, اگر سوال میں نہیں پوچھنا ہے تو پھر میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے, میرا خیال ہے وہ, میں بالکل ٹھیک ہوں عمران, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. آپ کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟
جی بھائی میں بھی بالکل خیریت میں, اللہ کا شکر ہے.
اچھا عمران یہ بتائیں, اگر آپ نے سردیوں میں چھٹیاں گزارنے جانا ہو تو آپ ساہیوال سے کسی زیادہ ٹھنڈے علاقے میں چھٹیاں گزارنے جائیں گے, یعنی کسی برفیلے علاقے میں جہاں پر برف ہو, زیادہ سردی ہو, آپ کو پتا ہے جو ٹھنڈے علاقے ہوتے ہیں لوگ ان میں بھی چھٹیاں منانے جاتے ہیں, یا کہ آپ کسی گرم علاقے میں چھٹیاں منانے جائیں گے کیونکہ آپ سردی سے تنگ آ گئے ہیں, کیا کریں گے آپ؟ ہیلو میرا خیال ہے ہمارا جو اسکائپ کا کنیکشن ہے جی وہ کچھ خراب ہو گیا ہے. تو شہزاد اگر آپ مجھے جو آپ کے اسکائپ پہ جو آپ کالز کر رہے ہیں وہ سنائی دے رہی ہیں, تو اگر آپ اس کو ڈسکنیکٹ کریں اسکائپ کا جو لائن ہے اور کوشش کریں کہ یہ اسکائپ ملانے کی آواز آن ایئر نہ جائے, اس کے لیے آپ کو وہ جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں انہیں بتانا ہوگا. جی ہاں, تو خیر ہم بات کر رہے ہیں جی اس بارے میں کہ گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے کیا کرنا ہوگا آپ نے, یا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, آپ کسی ٹھنڈے علاقے میں جانا چاہتے ہیں یا کسی گرم علاقے میں جانا چاہتے ہیں. بہت سارے لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ سردیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے کسی ایسے مقام پر جائیں جہاں پر زیادہ برف پڑی ہو, کیونکہ کچھ اسپورٹس بھی ایسے ہیں, کچھ ریکریشن فیسلٹیز بھی ایسی ہوتی ہیں جن پر جا کر سر جو ونٹر اسپورٹس ہوتے ہیں لوگ ان میں بھی شامل ہونا چاہتے ہیں, جیسے اسکینگ ہے, آئس اسکیٹنگ ہے, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. تو وہ لوگ جن کو یہ شغف ہوتا ہے, جو یہ کام کرنا چاہتے ہیں, وہ زیادہ ٹھنڈے علاقوں میں جانا چاہتے ہیں, ایسے علاقوں میں جانا چاہتے ہیں جہاں پر اس قسم کی فیسلٹیز ہیں, اسکینگ ریزورٹس ہیں, وہ وہاں جاتے ہیں, وہاں رہتے بھی ہیں اور اپنا اسکینگ کا شوق بھی پورا کر لیتے ہیں. کچھ علاقے, کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ بہت زیادہ گرم علاقوں میں رہتے ہیں, جب وہ سردیاں آتی ہیں تو ان کا دل چاہتا ہے یا ان کو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ کسی انتہائی ٹھنڈے علاقے میں جایا جائے جہاں برف ہو, جہاں سردی ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی موسم بنائے ہیں ان سب کا اپنا ایک ایک رومانس ہے, چاہے وہ جاڑا ہے, چاہے وہ سردی ہے, چاہے وہ گرمی ہے, یا کوئی اور کہہ لیجئے کہ جگہ ہے, کوئی اور مقام ہے, ہر جگہ کا اپنی اپنی خوبصورتی ہے اور ہر انسان فطرتاً اپنے آپ کو کنیکٹ کرتا ہے کسی نہ کسی خاص موسم سے, کسی نہ کسی خاص ماحول سے. تو کوئی اپنے آپ کو کنیکٹ کرتا ہے بہار سے, کوئی اپنے آپ کو کنیکٹ کرتا ہے خزاں سے, کوئی سردیوں کی بارش سے, کوئی برف سے, کوئی جو بہار میں پھولوں کی مہک ہوتی ہے اس سے, کوئی سنہرے بادلوں سے. تو ہم نے اپنے جاننے والوں سے یہ پوچھنا ہے کہ وہ کیسے کنیکٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو فطرت سے.
جی بالکل, اور ہمارے جو سننے والے ہیں ہم ان سے یہ سوال جو ہے بار بار دہرا رہے ہیں کہ اگر اس موسم میں آپ کو چھٹیاں انجوائے کرنے کے لیے کہیں جانا پڑے تو آپ کہاں جانا پسند کریں گے ساہیوال سے نکل کر. کچھ لوگ, مطلب ہمارے کچھ لسنرز نے کہا جی کہ ہم ساہیوال میں ہی رہنا پسند کریں گے. لسنر اس وقت آپ FM 96 ساہیوال سن رائز پاکستان سن رہے ہیں اور وائس آف امریکہ ان امریکہ سے براہ راست یہ پروگرام آپ کی سماعتوں تک پہنچ رہا ہے, اور میں یہاں پر موجود آپ کی میزبان نجمہ ہوں, اور میرے ساتھ موجود ہیں
محمد عاطف جی, میں ہوں واشنگٹن میں وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز سے. ایک مرتبہ آپ کو ریمائنڈ کرا دیں کہ یہ پروگرام وائس آف امریکہ اور FM سن رائز کی مشترکہ پیشکش ہے. آپ ہمارا یہ پروگرام ہر मंगल और बुध की रात सुन सकते हैं 9 बजे से लेकर 10 बजे तक पाकिस्तान में। और अगर आप पाकिस्तान में हैं, साहिवाल में नहीं है, साहिवाल से कहीं बाहर हैं, तो आप इस प्रोग्राम को सुन सकते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की वेबसाइट पर, जो कि है www.urduvoa.com। और इस वेबसाइट पर लॉग इन करके आप हमारा ये प्रोग्राम दुनिया के किसी भी कोने में इंटरनेट के जरिए सुन सकते हैं।
जी आतिफ, हमारे पास एक कॉल है और हम बढ़ते हैं कॉलर की तरफ।
जी
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
जी कौन बात कर रहे हैं और कहां से?
जी समीर बात कर रहा हूँ, फ्री टाउन से।
समीर बात कर रहे हैं फ्री टाउन से। जी समीर, प्रोग्राम कैसा लग रहा है आपको?
अच्छा लग रहा है, मैं आतिफ साहब से बात करना चाहता
हूँ। जी बिल्कुल।
जी समीर साहब अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपकी कॉल का।
सर सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान में, आपको वेलकम।
बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम।
सर आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और आपकी बहुत ज्यादा अच्छी है और मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले मैंने इस्लामाबाद में सुना था, मतलब कि सनराइज के थ्रू
जी,
और आज मुझे साहिवाल में सुनने को बहुत अच्छा लगा। और चौधरी इम्तियाज साहब का मतलब ये स्टेप बहुत अच्छा है। और उसके अलावा आप जो है इसी तरह कॉपरेशन करते हैं 96 के साथ।
जी जरूर,
जितनी भी आवाम है उसके लिए बहुत अच्छा स्टेप है।
बहुत शुक्रिया आपकी, आपकी इनायत है, आपने इतनी मोहब्बत से हमारे लिए जो बातें कही हैं उनको हम हमेशा याद रखेंगे। और जहां तक ताल्लुक है साहिवाल के लोगों के साथ रिश्ता बनाने का, उनसे ये मोहब्बत कायम रखने का, तो ये कायम रहेगी जी। बस आप दुआओं में याद रखिए हमेशा और हमें फीडबैक जरूर दीजिए। मेरे लिए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका फीडबैक। आपको क्या लगता है कि हम जो बात करते हैं, जिन मौजुओं पर बात करना चाहते हैं, वो मौजू क्या होने चाहिए, कैसे होने चाहिए? मैं अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश करता हूँ हमेशा, लेकिन आपकी राय बड़ी इम्पोर्टेंट है।
सर मैक्सिमम इस तरह से कि जो भी रेडियो पे यहाँ पे टॉपिक वगैरह रखे जाते हैं, जो लिस्टर्स होते हैं, जो सुनने वाले होते हैं, कुछ इफेक्ट जरूर होता है। और जहाँ तक मेरा ख्याल पड़ता है, जो आज आपने स्टेप लिया है, आज मतलब आपने टॉपिक रखा है, अच्छा लाइफ का टॉपिक रखा है और लाइफ के हवाले के हवाला से मुख्तलिफ टॉपिक होंगे तो इंशाल्लाह सभी लोग सुनेंगे। और वैसे भी जो 96 है हमारे एरिया में बहुत ज्यादा सुना जाता है, मतलब इस साल हो गए हैं साहिवाल में। तो सर मैं तो आज बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ कि ये मेरी आवाज थ्रू आउट द 96 अमेरिका, और अमेरिका की आवाज जो स्पेशली आपके साथ सर आपकी हमारे कानों तक आ रही है।
बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
जी जी आतिफ, जैसे वाकई इन्होंने बात की कि आज का जो हमारा टॉपिक था वो तो खैर हमने लाइट सा रखा, चूंकि हम चाह रहे थे कि आज का प्रोग्राम हमारा जो है वो लिसनर्स पे बर्डन ना बने। वैसे बर्डन नहीं होता कोई भी प्रोग्राम, जो इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम होता है तो वो भी उनके नॉलेज में इजाफा हो रहा होता है, उनके जो इल्म में इजाफा करने की जो है वो शेयर करते हैं। और बहुत सारी बातें आपको पता है कि जब हम प्रोग्राम कर रहे होते हैं, कोई मौजू रखते हैं, तो हमें सुनने वालों की तरफ से बहुत अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं।
जी हाँ बिल्कुल, और उसका उसका फायदा एक और ये भी होता है कि सुनने वालों को हम वो बातें बताते हैं जो शायद उनके नजर से ना गुजरी हों, उनके इल्म में ना हो, और सुनने वाले हमें अपने तजुर्बे और तज्जिये के बायस हमें बहुत सी ऐसी चीजें बताते हैं जिनके बारे में हमने शायद सोचा ना हो। वैसे तो कोशिश ये भी होगी कि हम जिस भी मौजू के बारे में बात करें उस पर बात करने के लिए उस फील्ड से रिलेटेड किसी न किसी राइटर को ले आए, किसी सोशल वर्कर को ले आए, किसी एक्सपर्ट को ले आए और उनसे वो सवालात पूछें जो हमारे और आपके जहनों में हैं। क्योंकि मैं बहरहाल अपने आप को बहुत ज्यादा वो क्या कहते हैं तोप नहीं समझता, मैं अपने आप को तबसराकार नहीं समझता। इन दिस शो आई विल रिमेन अ प्रेजेंटर, आई एम अ प्रेजेंटर। तो कोशिश ये होगी कि बाकी लोगों के जरिए आपके सवालात का जवाब दिया जाए, लेकिन व्हेन इट कम्स टू बहस मुबासा तो फिर यकीनन उसमें हम भी शामिल होंगे। नजमा, अब मेरा ख्याल है प्रोग्राम के खत्म होने में तकरीबन 5-6 मिनट ही रह गए हैं, तो अगर तो कोई और कॉलर हो तो हम कॉल लेते हैं, अगर नहीं हो तो फिर जरूर।
जी कॉलर हमारा ऑनलाइन है, हम उनकी तरफ बढ़ते हैं
जी
और बात करते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम।
जी कौन बात कर रहे हैं और कहां से बात कर रहे हैं?
जी शाहिद फरीद बात कर रहा हूँ, आरेवाला रोड बाईपास साहिवाल से।
जी शाहिद फरीद, आरेवाला रोड बाईपास से। जी आप शाहिद साहब, प्रोग्राम कैसा लग रहा है आज का आपको?
जी बहुत अच्छा लग रहा है, और साहिवाल के लिए ये एजाज की बात है कि इतना इम्पोर्टेंट प्रोग्राम साहिवाल के लिए हुआ है, और हमेशा से दुआ गो रहेंगे कि इंशाल्लाह ये सिलसिला इसी तरह चलता रहे।
आमीन। आतिफ साहब इस वक्त मौजूद है मेरे साथ, आतिफ जो है अमेरिका के स्टूडियो में मौजूद है, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे?
उनको अस्सलाम वालेकुम कहूंगा, और पाकिस्तान की तरफ से खुश आमदीद कहते हैं हम, और बहुत अच्छा लग रहा है 96 की अकावश से ये जो प्रोग्राम चल रहा है, इसको हमेशा कामयाब करें।
बहुत शुक्रिया आपका, आपने जितने प्यारे अल्फाज इस्तेमाल किए हमारे इस प्रोग्राम के लिए और जिन अल्फाज में आपने हमारी इस कोशिश को सराहा, आपका बहुत शुक्रिया। और जैसे मैंने कुछ देर पहले भी कहा था कि जनाब,
ये जो छुट्टियों का सिलसिला ये तो मैं साहिवाल में गुजारना पसंद करूंगा, क्योंकि यहाँ देसी जो है मतलब रवायात है, साग मिलता है और मक्की की रोटी है, गन्ने है, मतलब ये चीजें बाहर नहीं मिलती, कहीं जाए मिलती
है। अच्छा, यकीनन, क्योंकि यहाँ की पैदावार होंगी। लेकिन एक बात है, मैं अभी
शुक्रिया आपका। जी आतिफ,
मैं जब अभी सोच रहा था कि सर्दियों का मैं फर्क बता रहा था आपको कि देखिए यहाँ बर्फ पड़ती है, ये होता है, ये होता है, तो मैंने सोचा पाकिस्तान में क्या होता है जब सर्दी आती है। पाकिस्तान में जब सर्दी आती है तो गाजर का हलवा मिलना शुरू हो जाता है
जी, बिल्कुल,
फ्राइड मछली मिलना शुरू हो जाती है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि सर्दियों में खास तौर पर जो बाजार हैं उनमें फौरन मिलना शुरू हो जाती हैं, दूध जलेबी मिलना शुरू हो जाती है।
जी बहुत सारी सौगात हैं।
अच्छा, अब ये चीजें खास तौर पर दूध जलेबी या कोई और बहुत ही जो लोकलाइज चीज है वो हम यहाँ बहुत ज्यादा मिस करते हैं। अब शहजाद मुझे वहां से कुछ बताने की कोशिश करें। अच्छा शहजाद मुझे कह रहे हैं जी चिकन कॉर्न सूप, यखनी, गरम अंडे, तो चिकन कॉर्न सूप तो खैर यहाँ भी दस्तयाब होता है और यखनी घर में भी बनाई जा सकती है, वैसे कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन गरम अंडे क्या बात है
ये। अच्छा, गरम अंडे की जो आवाज होती है ना, अंडे बेचने वाले की आवाज जो होती है ना, यकीन करें कि सर्दी में जब बाहर मतलब बिल्कुल निकलने को दिल ना चाह रहा हो, आप रजाई में घुसे बैठे हैं और कहीं आपके पास जो हीटर जल रहा है या कोयले, इवन अभी भी यहाँ पर कुछ घरों में जो कोयले जलाए जाते हैं, अच्छा, या लकड़ी वाले जो चूल्हे हैं तो उनको जलाया जाता है, तो उनकी आग जो है वो ताप रहे होते हैं और बैठे होते हैं, और साथ में जनाब बाहर से आवाज आए अंडे वाले की, तो वो एक बहुत एक्साइटिंग होती है।
जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और अब जैसे वो आपने जिक्र कर दिया ना जी कि लकड़ी जला के फिर उसकी आग तापने के लिए उसके गिर्द बैठा जाता है, जब उसके गिर्द आप आग तापने के लिए बैठते हैं ना, तो फिर उस प्रोसेस में और बहुत कुछ होता है। उस प्रोसेस में गुफ्तगु होती है, उस गुफ्तगु में लोग अपनी बातें दूसरों के साथ शेयर करते हैं, एक दूसरे से मशवरा लेते हैं, किसी भी उनकी राय लेना चाहते हैं किसी भी मामले में, और इससे जो फैमिलीज के अंदर बॉन्डिंग होती है वो मजीद बढ़ जाती है।
जी बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ हैं, लास्ट कॉलर हैं, हम इनसे बात करेंगे और उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। जी अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम रह गया। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो।
हेलो
जी, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम
जी, खैर है, मतलब आपकी आवाज बड़ी मुश्किल
है, ये तो लगता है भागती भागती आई है और फोन उठा लिया है इन्होंने बस।
ये लगता है अमेरिका से भागकर साहिवाल से आकर फोन अटेंड किया इन्होंने।
मुश्किल से मिली है। देखिए, अगर चीजें संभाल के ना रखी जाए तो मुश्किल से ही मिलती हैं।
अच्छा आतिफ, इस पे एक मुझे शेर याद आ गया कि जिंदगी से यही गिला है मुझे, तो बहुत देर से मिला है मुझे। तो ये
आपको आपको
जी।
अच्छा वैसे इनका नाम तो हमने पूछा ही नहीं।
हाँ जी बिल्कुल, नाम आप बता दीजिएगा लिसनर हमारे साथ जो बात कर रही हैं।
अनाया मेरा नाम और प्यार से मुझे एनी बोलते
हैं। अनाया नाम है और प्यार से एनी बोलते हैं, तो आप साहिवाल से बात कर रही हैं या किसी और साहिवाल के पेरिफ्री से?
मैं
पाकपतन से बात कर रही हूँ।
माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए एनी साहिबा, ये बताइए कि अगर आपको ये मौका दिया जाए कि आप सर्दियों की छुट्टियां गुजारने बाहर जाएं, तो ठंडे इलाके में जाएंगी या गर्म इलाके में?
जहाँ तक मेरा ख्याल पड़ता है कि पाक पतन ठीक है,
अच्छा ख्याल पड़ता है इनका जी, वो पाक पतन में बहुत ठंड है और ये पाक पतन में ही रहना पसंद करेंगे।
और आरिफ भाई ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है और ऐसे ही प्रोग्राम करते रहे।
जी जरूर करते रहेंगे एनी, आप कॉल करती रहिएगा, हम प्रोग्राम करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और नजमा, वी हैव वन मिनट लेफ्ट बिफोर आई हैव टू से बाय बाय टू ऑल द लिसनर्स इन साहिवाल और साहिवाल के गिर्दो नवा में जो लोग मुझे सुन रहे हैं। तो जनाब, आई होप आपको आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद नहीं आया तो मैं बहुत माजरत चाहता हूं, कल मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा बेहतर प्रोग्राम कर सकूं। और अगर आप अपनी राय देना चाहें तो हमें किसी भी वक्त कॉल कीजिए हमारे नंबर्स पर, नंबर्स आपको नजमा पहले भी बता चुके हैं। नजमा, व्हाट अ प्लेजर टू होस्ट द शो विद यू। इंशाल्लाह कल तमाम सुनने वालों से दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद आतिफ को वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।
जी बहुत शुक्रिया आतिफ साहब, थैंक यू वेरी मच। आतिफ, आप से भी बात करके बहुत खुशी हुई, और आज पहला प्रोग्राम आपके साथ ये कंबाइन शो करने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। आपकी बहुत सारी जो इन्फॉर्मेटिव बातें हैं जो पहले प्रोग्राम में आपने वाशिंगटन के हवाले से, अमेरिका के हवाले से हमसे शेयर की, तो वो भी बहुत अच्छा लगा। और यकीनन हमारे साहिवाल के लिसनर्स ने आपको दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम किया है, और इनशाला ये जो खुश आमदेद है ये हमेशा रहेगी, और इनशाला कल का प्रोग्राम भी बहुत अच्छा होगा, और कल के प्रोग्राम में भी इंशाल्लाह हमारे लिसनर्स जो हैं वो एंजॉय करेंगे। जी लिसनर, आप सुन रहे हैं FM 96 साहिवाल के स्टूडियो से लाइव प्रोग्राम वॉइस ऑफ अमेरिका, और अमेरिका और पाकिस्तान में इस वक्त ये आवाज जो है आपने